ओम शांति। आज 28 नवंबर 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन तो भक्ति क्या है? छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते। श्री कृष्ण के मुख में क्या दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? वो कहते चोरी करके खाता था, और यहां मक्खन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ज्ञान है। कृष्ण के मुख में क्या है? ज्ञान। ज्ञान है मक्खन, भक्ति छाछ। वो ज्ञानी है, उसका मक्खन मुंह में दिखाना मतलब उसके पास सारे संसार का जो श्रेष्ठतम आदि मध्य अंत का ज्ञान है वो उसके पास है। प्रश्न, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? निश्चय बुद्धि की परख क्या है और निश्चय के आधार पर क्या प्राप्त होता है, क्या फायदा होता है? उत्तर, नंबर एक, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने हो। फिदा होने वाला किसे कहते हैं? बस बाकी सारी दुनिया उसके लिए मर गई, सारी दुनिया को छोड़कर वो जाकर क्षमा के ऊपर क्या हो जाता है? फिदा हो जाता है। बस जो बाबा तू कहेगा मैं वो करूंगा, बाकी मैं दुनिया में किसी का भी कहना नहीं। फेरी लगाने वाले नहीं, फेरी लगाने वाले नहीं। जो आए घूम फिर करके चले गए, फिर आए घूम फिर करके चले गए, धारणा की नहीं, सुनना नहीं, समझा नहीं, अपने जीवन में उसको लाया नहीं, वो कौन है? फेरी लगाने वाले। आए सुना चले गए, आए सुना चले गए, जैसे के तैसे। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं। जो क्षमा पर फिदा होते हैं वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। नंबर दो, धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए। जो धारणाएं परमपिता परमात्मा ने दी हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर जाएंगे। ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है, बाकी नहीं कर सकते। जिनको डाउट है वो वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे इस धरती पर। ओम शांति। भगवानोवाच, भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता परम आत्मा। भगवानोवाच किसने कहा? भगवानोवाच किसने कहा? उस निराकार परम पिता परम आत्मा ने निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ना मेल और ना फीमेल कहा जाता है, ना मेल कहा जाता है और ना फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, जो भी मनुष्य मात्र हैं वे सब ब्रदर्स हैं, वे सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई, सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है, भाई बहन है। ये हमेशा सबको समझाते रहो, ये हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं, सर्व का सदगति दाता एक मैं हूं, सर्व का सदगति दाता एक मैं हूं, सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूं और फिर सर्व का सतगुरु भी हूं, फिर सर्व का क्या हूं, सतगुरु भी हूं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं, उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, वही बाप, श्री कृष्ण नहीं सिखलाता। श्री कृष्ण को बाप ही नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को बाप ही नहीं कह सकते, उनको देवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, देवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी हैं, भारतीय सतयुग में दैवी गुणधारी श्रेष्ठाचारी था, दैवी गुणधारी श्रेष्ठाचारी था, फिर वे भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है, फिर क्या बनता है, भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो, आकर क्या करो, राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। रावण कौन है, ना कोई पंडित जानता है, ना कोई विद्वान जानता है, ना कोई आचार्य जानता है कि रावण कौन है। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, सतयुग से त्रेता तक राम राज्य है, ना कि त्रेता में राम राज्य है। द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य है, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य है। ब्रह्मा कुम ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का भी दिन, स्वर्ग सुख। ब्रह्मा की रात तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की भी रात, दुख नरक। रात पूरी हो दिन आना है, जब रात पूरी होगी तो दिन आएगा, दिन पूरा होगा तो रात आएगी आएगी। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तीन सेनाएं भी हैं। परम पिता को कहा जाता है बिलवेड मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज, तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना, कभी नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंचते ऊंच भगवान है, अर्थात ऊंचते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी कहना ये तो बाप को डिफेम करना है, सर्वव्यापी कहना ये तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं, ग्लानी करते करते धर्म ग्लानी हो गई। ग्लानी इतनी करते करते क्या हो गया, धर्म की ही ग्लानी हो गई। भारत क्योंकि ग्लानी किसकी होनी थी, हमने परमात्मा को डिफेम किया, परमात्मा के बारे में उल्टा सुल्टा दुनिया को बताया, जिसके कारण परमात्मा से बेमुख हो गए। परमात्मा से बेमुख होना माना परमात्मा के ज्ञान से बेमुख होना। छाछ के सारे चलने लगे, आज तो छाछ भी ऐसी मिलती है,
पानी
पानी छाछ भी नहीं मिलती। मतलब दूध के पानी है, और आप जो दही मार्केट की दही आती है, या अमूल की हो तो चाहे जो जो भी है, अब वो दही का टेस्ट है क्या, फीकी है एकदम, कोई टेस्ट नहीं है। मतलब हाँ, जोड़ का पानी भर लेते, जहाँ से मिल जाए पानी, कहीं से भी टूटी से। हाँ बिल्कुल, कहीं से भी चाहे, मतलब कोई यदि कोई सांप भी है तो जोड़ में से नहीं भरा तो कहीं से भी भर लिया, किसी भी टूटी से, किसी भी नलके से, कहीं से भी भर लेते पानी। पानी की कमी तो है नहीं, परंतु ये होता है कि हाँ जी हाँ भारत कंगाल, भ्रष्टाचारी बन गया है। कंगाल बना चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है, भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है, सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण क्या बना देता है, इसको नरक बनाता है। अर्थात रावण की मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं, फिर उन्हों को बदलकर मैं देवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ये विशेष सागर है, वे खीर सागर है, यहाँ वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। सत्युग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था, हीरे ज्वारों के महल थे, अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट। अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है, मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने देवी धर्म को भूल गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़ी। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है, हार भी तुमने खाई, नरक में आए। अब बाबा आए हैं, समझा रहे हैं कि अब इस माया पर जीत पाओ, अपने जीवन से अज्ञानता के अंधेरे को दूर निकालो और फिर से तुम अपने इन कर्म इंद्रियों के राजा बनो। ये है जीत पाना। ये पांच विकारों में फंसे हुए हैं, अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है, शिव का स्थापन किया हुआ कलयुग को वैशाल्य कहा जाता है। सब विकारी हैं, सब बाप कहते, अब बाप कहते हैं दे के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो, तुम और कोई को याद नहीं करते हो, तुम हो विनाश काली प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परम पिता परम आत्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं, ऊपर में है शिव बाबा, फिर मात पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं, रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ, कितना बड़ा राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है, जो भी अनेक धर्म आदि हैं, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब ये यज्ञ पूरा होगा। ये है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ, अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ, सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा, अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है, इस बात को बुद्धि में रखना है, जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। ये है शिव बाबा का रथ, शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है कि घोड़ा गाड़ी हो उसका रथ बनाया जाए उसमें खड़ा हो करके गीता का ज्ञान सुनाए। वे तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूं, मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूं। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है, फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं, तुम विश्व के मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो, बाप आकर मक्खन खिलाते हैं, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है और फिर छाछ का भी क्या हो जाता है, पानी भी नहीं रहता। ये सब समझने की बातें हैं, नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूं। मैं जब आता हूं तब ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूं, मैं लिबरेटर बनता हूं, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बाप क्षमा है उस पर परवाने, कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते, समझते कुछ नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं कि बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वे तो फिर प्रजा में ही नंबर वार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वे वर्षा लेते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, ज्ञान का सागर कौन है, एक ही बाप है। फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम सदगति को पा लेते हो, सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते, कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते, अभी सब उस बाप को याद करते, अभी सब उस बाप को याद करते हैं, क्योंकि वे है ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर, सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो, जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो, तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है, सारी नॉलेज मिल रही है। ये कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है, तुम बच्चों का अब क्या करना है, सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना, वंदे मातरम, शिव शक्ति वंदे मातरम गाया हुआ है। और वंदना किसकी की जाती है, वंदना किसकी करते हैं दुनिया में, जो पवित्र हो, कुमारी है पवित्र है उसकी वंदना करेंगे, शादी हो गई अपवित्र बन गई, अब तू कर वंदना, मेरा गर्क हो गया, क्यों नहीं, उदार कैसे होगा, वंदना पवित्र की ही होती है, वंदना पवित्र की ही की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं, और ससुर घर गई और विकारी बनी तो सबको माथा टेकती है। नैतिकता नहीं है ये, सच बताना है। तो वैसे तो पांव तो दोनों ही छूते हैं ना, चाहे कुमार हो तो चाहे कुमारी हो, उठेंगे सवेरे सवेरे सबके जाके पांव छू के आएंगे। तो पांव छूने का मतलब है क्षमा करो, माफी करो, हमने गलती की है भाई। वो यही कहते हैं कि हम गलतियां कर रहे हैं, हमसे जो गलती हो रही है हमें क्षमा करो, माफी मांगना, पांव छूना, ये पांव छूने का मतलब है मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ, मैंने जो गलती किया है मेरी गलतियों को ध्यान न रखो, मुझे गलतियां करने दो। हाँ ये छुट्टी दी जा रही है और किस लिए पांव छूते हैं, देखिए भाई जी ये तो अब हो गया, अब वो घुटने भी छूते हैं, क्या छुए कि तुम भी पाप कर रहे हो तो हम भी पाप कर रहे हैं, किस बात के तुम्हारे पांव छुए, अब बात तो यहाँ आ गई। पहले बेचारे नादान थे, उनको जैसा कह दिया उन्होंने वैसा कर दिया, पांव तक पूरे दंडवत प्रणाम कर देते थे, अब वो क्यों करे, अब तो पता लग गया तुम भी नर्क में हो तो हम भी नर्क में, जैसे तुम वैसे हम। हाँ जी कुछ भी करो, मतलब कहने का है कि अभी अपवित्र गृहस्थ आश्रम, अभी क्या है, अपवित्र गृहस्थ आश्रम है, और धर्म ही दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता, बाप बच्चों के लिए तिरी हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर ले सकते हो, घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है, सन्यासियों का क्या है, निवृत्ति मार्ग अलग है। आप बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। पांच विकारों का दान दे तो माया का ग्रहण छूट जाए, माया का ग्रहण छूटे तब सोलह कला संपूर्ण बने। माया का ग्रहण छूटना मना अज्ञानता का अंधेरा खत्म होना, ज्ञान की रोशनी में आना, कृष्ण के मुंह में मक्खन आना, सोलह कला संपूर्ण बनना। सोलह कला संपूर्ण बनना सतयुग में है। सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा। और अब श्री मत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है, फिर से ऐसा बनना है। भगवान है ही गरीब निवास, सौकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वे तो समझते हैं हमको धन आदि भूत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ही ज्ञान लेती हैं। भारत तो गरीब है, भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण हैं, उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना, सौकारों को समझने की फुर्सत नहीं, सौकारों को समझने की फुर्सत नहीं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, सात रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूं। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं, बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं। पहले जब सात रोज का कोर्स पूरा करें तब नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़े ही रंग चढ़ेगा। सात रोज के बाद पता चलता है ये लायक है वा नहीं। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। बाहर जाने से ही क्या होता है, उसका रंग उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। पहले कैसा रंग चढ़ाना है, पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है, पवित्रता के आधार पर कोड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना। श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी, सोलह कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है, क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझना है, जो भी परिस्थितियां आई हैं, साइड सीन जानते हैं किसको कहते हैं, जब हम यात्रा पर जाते हैं तो इधर इधर जो दिखाई देता है दोनों तरफ या सामने, उनको कहा जाता है साइड सीन। हाँ, और रास्ते में जो दिखता है कोई अच्छा भी दिखाई देता है तो कुछ खराब भी दिखाई देता है। तो हम इस जीवन यात्रा पर हैं, इस जीवन यात्रा में सुख भी आता है तो दुख भी आता है, तो इसको कहा जाता है साइड सीन। दुख आवे तो भी, सुख आवे तो भी पास। रुकनी थोड़ा है,
फ्रंट सीन क्यों नहीं गए?
फ्रंट सीन भी है, फ्रंट सीन भी साइड सीन में आएगा, फ्रंट सीन को भी फ्रंट सीन नहीं कहेंगे। जो कुछ भी आ रहा है हमारे सामने से पाएगा ना, हम पीछे वाले को तो देखेंगे नहीं ना।
देख तो रहे, आगे वाले को ही हूं, तो फ्रंट ही हुआ, बैक में किसको देख रहे हैं, किसी को नहीं।
भाई जी, साइड का मतलब होता है किसी भी साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सारे साइड कहलाएंगे। साइड नहीं हो सकता, नहीं मतलब
मुड़कर नहीं देखना, पूरा कमरा देख रखा, कमरा ये फ्रंट सीन है भाई।
फ्रंट मतलब साइड सीन का मतलब है कि जीवन में जो भी आए, दुख आए, सुख आए, और वो बीत जाना है। फ्रंट से भी आएगा तो या तो इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। फ्रंट से आएगा चाहे वो सुख हो तो चाहे दुख हो, तो मान लो कि दुख दायां हाथ है या सुख दायां हाथ है तो दुख बायां हाथ है, तो जो जिधर से निकल जाए दुख भी बीत जाएगा, सुख भी बीत जाएगा, पीछे चला जाएगा ना। आया तो सामने से था, चला तो पीछे गया ना, चाहे इधर से जाए तो चाहे इधर से जाए, तो बीत जाएगा। पार करने वाले स्मृति स्वरूप, याद रखो कि हर बार दुख भी आता है, सुख भी आता है, नई बात नहीं है। सुख आया नथिंग न्यू, दुख आया नथिंग न्यू, दोनों ने चले जाना। स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव, स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। ये तो खेल है, भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते हैं, ये सब रास्ते के साइड सीन है। रास्ते के क्या है? साइड सीन। भाई ये बीता, ये बीता, इसको साइड साइन, साइड सीन कहो, इसको चट्टियां भी कहते हैं। बाबा चट्टियां समझते हैं? नहीं, चटियां बोला जाता है जो निशान लगा होता है, 10 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, पत्थर से लगे रहते हैं, हाँ जी, उसको चटियां बोलते हैं। माइलस्टोन बोलो, चटिया अंग्रेजी में माइलस्टोन बोलेंगे, ठीक है। तो वो लिखा होता है, तो जैसे अब हमने जाने कहीं भी तो ये इतने किलोमीटर खत्म हो गए, इतने किलोमीटर खत्म हो गए, इतने किलोमीटर खत्म, हाँ मतलब खत्म हो गए। तो खत्म हो गए का मतलब क्या होता है कि ये साइड सीन बीत गए, ये साइड सीन उनको ऐसे लगता है बस ये बीत गए, खत्म, अब हम नजदीक होते जा रहे हैं। जितने भी दुख आए, सुख आए, वो सारे हमें ये बता रहे हैं कि इतने दुख खत्म हो गए, इतने सुख खत्म हो गए, अब बाकी थोड़ा रह गया। देखने जाए तो स्मृति के स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, इसके नाम चाहे कुछ भी रखो, साइड सीन को परिस्थिति कह दो, प्राय स्थिति, हमारी स्थिति तो है नहीं, चाहे इसे पेपर कह दो, चाहे इसे विघन कह दो, ये सब क्या है? साइड के सीन है, ठीक है ना। और सबने बीत जाना है, चाहे वो अच्छे हो तो चाहे वो बुरे हो। स्मृति और स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन है, अनगिनत बार पार किए, पहली बार थोड़ा पार कर रहे हैं। जो कुछ भी दुख या सुख आ रहा है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 साल बाद हम इस सारे रास्ते को पार करते हैं, ये दुख भी पार करते हैं और ये सुख भी पार करते हैं। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय, इसने ये गलती की इसको ठीक करो, इसने ये गलती की, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ो। किसके साथ? और दूसरे को करेक्शन नहीं करो, क्योंकि जब हमारा बाप के साथ कनेक्शन होगा तो हमें ये बात याद रहेगी कि इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। क्योंकि बाबा की श्री मत के अनुसार कोई भी आत्मा कोई गलती नहीं कर रही, वो जो कुछ भी कर रही है वे उस आत्मा का अपना पार्ट है, अपना रोल है, उसी के अनुसार वो चल रही है। तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी, जब बाबा के साथ उसका कनेक्शन होगा तो उसे हर बात में कल्याण दिखाई देगा और वरदान मिलते रहेंगे। अच्छा, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं, खाली ओम ओम बोलते रहें। कई योग करा दे, ओम घंटा लगा देंगे, ओम 10 बार ओम करा देंगे, क्या है उसमें, वॉइस क्यों कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सांस लंबा ले रहे हैं, ले लो वैसे सांस लंबा ले लो, किसी ने रोक रखा है कि सांस लंबा मत लो, नहीं योग सांस ले लो लंबा ना, और जब खुशी मिलती है तो कितने लंबे सांस चलते हैं, ऑटोमेटिक सांस चलते हैं, आगे जबरदस्ती लंबा सांस लेने की कोशिश होती है। आप बाबा की इस याद में हैं, आपको खुशी मिल रही है, आपको श्रीमत मिल रही है, तो आपका सांस ऑटोमेटिक लंबा हो रहा है। ओम करने से क्या मिल जाएगा सीधा, सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। ओम रटो माना ओम जपो, जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है, सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य हैं, चाहते तो अवश्य हैं कि हमें शांति प्राप्त होवे, उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसी ही दिखाई दे रही है जो अशांति दुख का कारण बनता जाता है। अशांति दुख का कारण बनता रहता है, क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया, नष्ट नहीं किया, तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती, शांति हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनको ये तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, और साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाता है, जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।